नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर सैन्य हमले को स्थगित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन की चीन यात्रा पर और सैम ऑल्टमैन तथा ओपनएआई ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख भी किया।
2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर आज रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रोम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे।
रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एक ऐसा समझौता जल्द ही हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। अमेरिका 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के G20 के मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोरल के मुख्य G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। अमेरिका सरकार ने क्यूबा के 11 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें वहां के संचार मंत्री, कई सैन्य नेता और मुख्य खुफिया एजेंसी शामिल हैं। ये कदम क्यूबा के कम्युनिस्ट नेताओं पर ट्रंप प्रशासन द्वारा दबाव बढ़ाने का एक हिस्सा है। ये कार्रवाई क्यूबा के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इसके अंतर्गत वेनेजुएला से आने वाले अधिकांश तेल खेपों पर प्रतिबंध के प्रयास भी शामिल हैं। ये कदम जनवरी में वेनेजुएला के नेता को पकड़ने के लिए अमरीकी छापे के बाद उठाया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से चीन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। श्री पुतिन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। रूस ने कहा है कि पुतिन और शी चिनफिंग दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के साथ साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पुतिन का यह दौरा 2001 में हुए चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई के खिलाफ एलन मस्क के दावे को खारिज कर दिया है। मस्क ने आरोप लगाया था कि ओपन एआई अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। ओकलैंड की संघीय अदालत ने माना कि मस्क ने यह मुकदमा करने में देर कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्क के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपन एआई इंसानियत की भलाई के लिए काम करने के अपने शुरुआती वादे से मुकर गई है। 28 अप्रैल को शुरू हुए इस मुकदमे में मस्क ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने पुराने आदर्शों को छोड़कर सिर्फ मुनाफा कमाने और अपने निवेशकों को अमीर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इटुरी और उत्तरी किवू प्रांतों में 118 और लगभग 30 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में भी एक मौत और एक संदिग्ध मामले की पुष्टि हुई है। अमेरिका ने समुद्र में पहले से मौजूद फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने एक आदेश में 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों के अनुरोध पर ईरान पर सैन्य हमले को स्थगित किया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन की चीन यात्रा पर हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।